वरा की जामे और माने सूरत हाल पेज 636। आप देखिए कि परहेजगारी के नाते से लोग चार किस्म के होते हैं, यानी गुनाहों से बचने के एतबार से अमूमन लोगों की चार किस्में होती हैं। इब्राहिम बिन अदम का एक कॉल है, कहते हैं कि वरा के एतबार से लोग चार किस्म के हैं। पहली किस्म वरा कलील और कसीर दोनों के पाबंद होते हैं। अब इसको साथ ही समझते जाइए, ये कौन लोग हैं जो सगीरा गुनाहों से भी बचते हैं और कबीरा गुनाहों से भी बचते हैं। बिल्कुल एक आजिज़ और परहेजगार की तरह उनकी ज़िंदगी गुजरती है, ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म के लोग जो होते हैं कलील पर मुख्तात रवैया अख्तियार करके वरा का सबूत देते हैं, लेकिन जब बुलंदी के मेयार पे पहुंच जाते हैं तो वरा को खैर बात कह देते हैं। ये वो लोग हैं जिनको आम लोगों की तरह समझा जाता है, थोड़ा सा माल हो तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, किसी का एक रुपया भी नहीं खाना चाहते, परहेजगार होते हैं। लेकिन जो ही इनको कोई मनसब मिल जाता है, कोई सदारत, कोई वजारत, कोई मनसब मिलता है, तो फिर ये उसमें केयर नहीं करते, फिर अवाम का माल खाना अपना हक समझ लेते हैं। तो ये कौन से हैं कि कलील पे राजी थे लेकिन कसीर मिला तो सब्र ना कर सके, और वरा और तकवा का जो ऊपर एक लुबादा पहना हुआ था वो उतर गया। और ऐसे लोग फिर इतने बेखौफ हो जाते हैं, ना आवाम से डरते हैं ना अल्लाह से डरते हैं, तो ये बेलगाम किस्म के लोग बन जाते हैं। तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो कसीर से तो वरा करने के पाबंद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कलील के बारे में अदम वरा में मुलव्वस होकर अपने कसीर को भी ज़ाया करते हैं। ये कौन लोग हैं? जिसमें अमूमन लोग होते हैं, आम लोग जो आमतुन्नास हैं, उनका हाल क्या होता है कि ना जिना करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना शराब पीते हैं, ना कुछ और, यानी बड़े बड़े गुनाहों से बहुत बचते हैं लेकिन सगीरा से नहीं बचते। छोटे छोटे गुनाह जिसको आप छोटे कहते हैं लेकिन वो छोटे नहीं होते, जो असल में लीड्स टू दी मेजर सिंस, मसलन गाने सुनना, गैर महरम औरतों की तरफ देखना, मर्द और औरत का इख्तलात, इससे केयर नहीं करते। अब जब वो इस तरह के आदि होते हैं तो उनके वो बड़े बड़े गुनाहों से बचना भी उनको फ़ायदा नहीं देता। फिर इसी तरह चौथी किस्म के वो लोग हैं ना जिसको छोटे का डर है ना बड़े का, ना कलील के बारे में मुख्तात और ना कसीर के। ये कौन लोग हैं? जो कह लीजिए कि क्रिमिनल्स टाइप के लोग होते हैं, ना सगीरा गुनाहों से रुकते हैं ना कबीरा गुनाहों से रुकते हैं, और मन मोजी किस्म के दिल होते हैं इनके, जिधर जो दिल चाहता है वही करते हैं। फिर इस्लाम किस वरा को पसंद करता है? अल्लाह ताला को कौन सा मुतबर्र इंसान पसंद है जो तमाम वाजिबात फराइज पर अमल करे, हर किस्म के मुनकर को छोड़े, हर बुराई से रुके, हर हराम चीज से किनारा कशी करे और शुबे की चीज़ों से परहेज करे और दूर रहे? तो ये है असल में मुतबर्र। एक अपनी पसंद की चीज़ को अपना लेना और जो चीज़ें ना पसंद हो उसको छोड़ देना, ये किसी इंसान का मुतबर्र होना साबित नहीं करता। अब्दुल्ला बिन मुबारक का एक कॉल है, कहते हैं जो शख्स 100% यानी 100% तकवा और परहेजगारी पर अमल हो मगर इनमें से किसी एक चीज़ पर सिर्फ, यानी 100 में से किसी एक चीज़ के बारे में परहेजगारी से काम ना लेता हो, तो ऐसा शख्स सिरे से मुतबर्र हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि फिर कितना सख्त क्राइटेरियन है। और मैं जब इन चीज़ों को पढ़ती पढ़ाती हूँ तो मैं हज़रत अबू ज़र को अल्लाह के नबी की हुई नसीहत को याद करती हूँ कि अबू ज़र कश्ती को बांध ले कि समंदर बड़ा गहरा है और हिसाब लेने वाला बड़ा बारीक बीन है। तो अल्लाह ताला की ज़ात इंसान पर जुल्म तो नहीं करती लेकिन इंसान को पूरी अक़ल दी है, समझ दी है। कोई भी चीज़ पूरी हो तो फ़ायदा देती है। आप देखिए, आप पूरे घर को गर्म करना चाहते हैं, हीट भी लगाते हैं, दरवाजे भी बंद करते हैं और एक खिड़की खोल देते हैं, तो क्या आपका कमरा कभी गर्म होगा? एसी भी लगा दें और साथ बाहर से खिड़कियां भी गाड़ी की खोल दें तो कभी भी फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह से इंसान को जो काम करना चाहिए पूरे दिल से करें। कामयाब वही लोग होते हैं, आखिर तक वही लोग पहुँचते हैं जो किसी भी काम को आसान दर्जे पर करें, चाहे वो वरा ही क्यों ना हो। अब सवाल पैदा होता है कि वरा कहाँ से होता है? हर चीज़ का एक महल है ना, एक मखरज है। तो आप देखिए कि इंसान का दिल, ज़ुबान, आज़ा और जवारे, हर चीज़ इन्वॉल्व है वरा में। यानी दिल से भी इसका ताल्लुक़ है, ज़ुबान से भी इसका ताल्लुक़ है और जिस्म के दूसरे आज़ा से भी ये चीज़ें। जब तक ये सब कुछ मिलेंगी नहीं तब तक इंसान में वरा नहीं आएगा। मसलन ज़ुबान से ज़रा से ढीले हो गए तो दिल की बातें चली जाएंगी और इसी तरह से अपोजिट दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ें। और आपको पता सबसे मुश्किल वरा किस चीज का है? जुबान का। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इंसानों की अक्सरियत जुबान की वजह से जहन्नुम में फेंकी जाएगी। तो जुबान का वरा इतना मुश्किल है कि दिल से मुत्तकी होने के बावजूद, जिस्म के दूसरे अज़ा को, आंखों को, कानों को गुनाहों से बचाने के बावजूद भी कुछ लोग जुबान की वजह से फेल हो जाते हैं। फुदैल बिन अय्याज कहते हैं, जुबान का वरा बड़ा ही सख्त तरीन मामला साबित हुआ। जुनैद कहते हैं कि गुफ्त व शुनीद में परहेजगारी से काम लेना अज़ा व जवारे से परहेजगारी बरतने के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल और भारी काम है। सच है कि नहीं? आप अपने ऊपर लेकर सोचें। अमूमन मैं कहाँ फिसल जाती हूँ? जुबान पे काबू नहीं रहता। आंख तो हम बंद कर लेते हैं, कान भी बंद कर सकते हैं, लेकिन जुबान बंद नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ हमारे अंदर ऐसे एक क्रेविंग की तौर पे आ चुकी है कि हम इसको इस्तेमाल करते रहे, इसको इस्तेमाल करते रहे। तो जब तक जुबान पे ये बात नहीं होगी ना, बात नहीं बनेगी। हसन का कौल है कि वरा की नशोनुमा होती है, यानी ये ग्रो करता है, जैसे छोटा सा पौधा है, फिर होते होते वो बड़ा होगा, मगर इसका असर यानी कलाम और उसकी असर पजीरी पर बहुत कम रहता है। यानी सारे जिस्म पे जरा आ जाता है। दिल भी अल्लाह से डरता है, दिमाग भी अल्लाह के बारे में सोचता है, हाथों से भी किसी को आप नुकसान नहीं देते, आपकी आंखें भी कोई गलत चीज़ नहीं देखती, लेकिन जो ही जुबान पे आने का वक्त आता है ये पीछे हट जाता है इंसान उससे। इसी तरह से इसहाक बिन खल्फ कहते हैं, गुफ्तगू में परहेजगारी और तकवा अख्तियार करना सोने और चांदी से भी ज्यादा महंगा है। अल्लाह अकबर। तो फिर हमें अपनी फिक्र करने की जरूरत है। अब अगला मसला यह है कि क्या वरा किसी तन्हाई में बैठकर करने वाला काम है या लोगों के बीच में भी इसकी जरूरत पड़ती है? तो याद रखिए, ये वो अमल है जो तन्हाई में भी और महफिलों में भी हासिल किया जाएगा। इतना खूबसूरत इसके ऊपर वाकया है इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जो उनके साथ पेश आया। अपने दोस्तों के साथ मदीना के इर्द गिर्द किसी बस्ती में गए, एक जगह पड़ाव डाला और खाने का दस्तरखान लगाया। अभी वहां बैठे ही थे सब सजा के, एक चरवाहा यानी शेफर्ड गुजरा, इनको देखकर उसने सलाम किया। पता चल गया कि मुसलमान है। आपने कहा कि आओ तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। चरवाहा कहने लगा, मैं तो रोजे से हूँ। हजरत उमर ने कहा, अच्छा, इतनी शदीद गर्मी के दिनों में भी रोजा रखते हो जबकि गर्म लू वाली हवा चल रही है? हाँ, फिर कहते हैं तुम तो सारा दिन धूप के अंदर और पहाड़ों की वादियों में बकरियां चराते रहते हो, ये बड़ा मुश्किल अमल है। तो चरवाहे ने क्या कहा, मैं अपने अय्याम के खाली औकात को इस तरह काटने की कोशिश करता हूँ। अब हजरत इब्ने उमर को शक तो कोई नहीं था, लेकिन उसके इम्तिहान लेना चाहते थे कि एक तरफ तो एक अमल में इतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है कि गर्मियों की दोपहरों में रोजे रख रहा है, दूसरी तरफ जरा देखते इसका दिल क्या क्या हाल है। कहने लगे, चलो इसके वरा का इम्तिहान लेते हैं। कहा कि ये तुम अपनी बकरियों में से एक बकरी मुझे बेच सकते हो? और वो किसी और की बकरियां चरा रहा था, यानी मुलाजिम था। हम तुम्हें इसकी कीमत दे देंगे और इसके साथ तुम्हारे साथ मिलके इसका गोश्त भी खाएंगे, कुछ गोश्त तुमको भी दे देंगे ताकि तुम रोजा खोल लो। चरवाहे ने कहा, मैं कैसे फरोख कर सकता हूँ, मेरी बकरियां नहीं, ये मेरे मालिक की हैं। तो इब्ने उमर ने इम्तिहान लेने की गरज से कहा कि फर्ज करो तुमसे कोई बकरी गुम भी तो हो सकती है ना, जाके कह देना मालिक को कि भेड़िया खा गया, हो सकता है ना, तो तुम्हारा आका क्या कर लेगा। तो ये बात सुनकर वो चरवाहा बैठा, यानी वहां से उसने पीठ फेरी और आसमान की तरफ उंगली उठाकर जोर जोर से कह रहा था, फाइन अल्लाह फाइन अल्लाह, फिर अगर मैं ऐसा करूंगा तो अल्लाह किधर गया? यानी मुराद क्या था कि मैं अल्लाह की निगाहों से कैसे बचूंगा। अब ये जुमला हजरत इब्ने उमर को इतना अच्छा लगा, इस जुमले को सुनकर बार बार दोहराने लगे, कालर रॉय, चरवाहे ने कहा, फाइन अल्लाह, किधर अल्लाह, किधर अल्लाह। फिर इब्ने उमर वापस आए, इस चरवाहे के आका को बुलाया जो उसका असल मालिक था बकरियों का, उससे वो सारी बकरियां भी खरीदी और वो चरवाहा भी खरीदा, क्योंकि उस दौर में गुलामी होती थी, और जाके उस चरवाहे को आजाद किया और वो बकरियां उसको तोहफे में दे दी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। एक बकरी की कीमत खा लेता ना अगर वो शख्स उस वक्त, तो इतनी बकरियों का मालिक तो ना बनता। आप सोचते हैं कि ये सिर्फ उस चरवाहे के साथ हुआ? अल्लाह की कसम, दुनिया में हर बंदे के साथ यही हो रहा है। हराम से एक बकरी खाते हैं ना, तो हम अल्लाह के दिए हुए हलाल की सैकड़ों बकरियों से खुद को महरूम करते हैं। लेकिन बहुत थोड़ा दिला होता है दुनियादार इंसान, वो छोटे से फायदे को देखकर राल टपकाने लग जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि हर इंसान के जो सरकमस्टांसेस है ना, हाल अहवाल, उसकी कंडीशन, उसके मुताबिक उसका बड़ा फर्क होता है। ये बड़ा अहम टॉपिक है। आप और मैं, हर एक, जितने भी लोग बैठे, हम डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट हालात से हो सकते हैं, हमारा बैकग्राउंड फर्क है, तो हर एक से वरा की जो मकदार मतलूब है ना, वो फर्क होगी। मसलन कैसे, छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों का वरा क्या है कि वो बड़ों की बातों में ना बोले, खाम खा बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, सियासतदानों की बातें ना करें, इधर की बातें उधर ना करें, वो अपने काम से काम रखे, ये उनका वरा है। इसी तरह जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, दरमियानी, उनका क्या है कि जब उनसे मशवरा मांगा जाए, मशवरा दें, हालात को देखे, हुक्काम तक अपनी बात को लेकर चले। इसी तरह जाहिल और आलिम का भी फर्क हो सकता है। जाहिल का और आलिम का फर्क बहुत नुमाया है। हिबा कहते हैं कि आलिम का वरा यह है कि वह अपने कलाम के मोती बखेर कर लोगों को इससे फायदा लेने की राह हमवार करे, और जाहिल की भलाई इसी में कि वो सुकूत ही इख्तियार करे। कितनी खूबसूरत बात है, यानी चुप रहना ही बेहतर है। कुछ लोग चुप रहते हैं तो बड़े अकलमंद लगते हैं, देखने में बड़े जीनियस है, जब बात करते हैं तो बात करने के बंदा सोचता है ये बोले क्या, राइट? तो बंदा क्या बोले, कब बोले, जब उसको पता हो कि ये बात मैं कर सकता हूँ। बात छेड़नी नहीं चाहिए, बाज लोग बात छेड़ करना मुश्किल में पड़ जाते हैं, और फिर बात संभलती कोई नहीं, और फिर दूसरों की बातें सुनते हैं। ये मैं आप सबको भी नसीहत करूंगी, हमारे यहाँ बचपन से एक चीज़ चल रही है, नीम हकीम खतरा है ईमान, ये सच है। आज जितने भी लोगों को जुरत मिलती है ना मौलवियों के लतीफे बनाने की या दीनदारों का मजाक उड़ाने की, उसकी वजह ये है, अधूरी बातें महफिलों में। ऐसे मिसाल आपको देती हूँ कि जैसे कई सिस्टर से मुलाकातें रहती हैं, क्या जी हम हर हफ्ते सब मिलती हैं, फिर क्या हम करते हैं, हम सब दोस्तें मिलके पढ़ती हैं, क्या करते हैं, हम एक टॉपिक चूज करते हैं, फिर उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या, आपने उस पर कुछ सुना, आपने कुछ सुना उस पर सुना, तो मैंने कहा उसके बाद एंड निकलता क्या, सारे एक जैसे, कोई एक है जो आपको चेक करे, ठीक है? तो कहती बस एंड पे अक्सर बहस हो जाती है, तो मैंने कहा आपको खुद ही नतीजा मिल गया, कभी फायदा ना। इसको कीलो काल कहते हैं, मन काला व मन काला, उसने कहा और तुमने कहा। आज आप देखिए अमूमन लोग सवाल पूछते हैं ना, तो उसका आगाज कैसे होता है, मैंने सुना है कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, बालों कैसे कर, भाई ये जरा आप एक्सक्यूज मी बताएंगी कि आपने किससे सुना है, तो वो फिर मेरी दोस्त ने बताया, वो मेरी खाला की बेटी ने, वो किसी दर्स में जाती है ना, उनको वहां से पूछवाया। गलत तरीका है ये, इल्म हासिल करने का बिल्कुल तरीका नहीं। आलिम चुप रहेगा तो नुकसान करेगा, ये भी नोट कर ले। इल्म है, खैर है, अल्लाह ने आपको कुरान सुन्नत का इल्म दिया, अब आप कहते हैं नहीं बताया, फिर अमल करना पड़ेगा, फिर लोग दुश्मन हो जाएंगे, मैं नहीं बोलती, तो ये आलम के वरा से खिलाफ है। और जाहिल को आता कुछ नहीं, चार लफ्ज़ पढ़ के दूसरों को बताने लग जाता है, तो ये उसके वरा के खिलाफ है। अपनी पोजीशन को पहचानें। मुझे याद आ रही है तारीफ, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, में एक लिखाई थी, किसी को याद हो तो हाथ खड़ा कर दें, कि हकीकी आलिम कौन है, यानी आलिम जिसको आप इल्म वाला कहते हैं, वो तो मान लिया खशियत इलाही, वो तो बीसियों बातें हैं, लेकिन एक तारीफ जो वाकई इस बिल्कुल इसी मजमून की है, किसी को याद है? सूरह फातिर कई दफा पढ़ चुके हैं जी, आप बताइए। वो तो आमिल होगा ना, आमिल नजूमी, नहीं ये बात नहीं थी। आलिम कहते हैं वो शख्स जिसको अपने इल्म की वुसअत का एहसास हो, उर्दू में बताऊं, पंजाबी में कह लें या उर्दू में, जिसको पता हो मैं कितने पानी में हूं। छोटा बंदा और बड़ी बड़ी बातें करे, उलमा की टांगे काटने लग जाए और चार लफ्ज पढ़ के, ये आलिम नहीं। आलिम को अपने इल्म की वुसअत पता होती है कि इससे आगे मैं नहीं बोल सकता। जाहिल को कोई नहीं पता होती, वो बड़बड़ बोलता ही रहता है, हर जगह बोलता है, सवाल कोई किसी से पूछे जवाब वो देने को तैयार खड़ा होता है। तो लिहाजा दोनों का फर्क आएगा। इसी तरह इब्ने उयैना से जब वरा के बारे में पूछा गया तो कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत तारीफ है, इसको आप नोट करेंगे, इस इल्म के हसूल का नाम वरा है, जिससे वरा की मारफत और इरफान नसीब होता है, यानी खुद को हराम के तो छोड़िए, मुश्तबे चीजों से बचाने का इल्म हासिल करना और उसको पा जाना, ये वरा है। बाज़ लोगों के नज़दीक हद से ज्यादा मुस्तकिल सुकूत इख्तियार करने और किल्लत कलामी को वरा कहते हैं, यानी कम बोलना, कम बोलने को भी वरा कहते हैं, लेकिन ये बात ऐसी नहीं। राइटर है वो कहते हैं, मेरे नज़दीक बोलने वाला या वाजो नसीहत करने वाला खामोश जाहिल से कहीं ज्यादा बेहतर और अफजल है। बात समझ आ गई। देखिए एक बंदा कहता है मैं गाड़ी चलाता ही नहीं, हादसा ही ना हो जाए, और एक कहता नहीं मैं चलाऊंगा, लेकिन रुकावटों को बूर करते समझते हुए, तो अकलमंद कौन है? चलाने वाला तो बोलिए, अल्लाह ने बोलना दिया, हम गूंगे थोड़ी हैं, लेकिन सोच के बोलिए। لوگ کہتے ہیں کہاں بولنا ہے، یہ عقل مندی ہے، حالانکہ عقل مندی کے کہاں رکنا ہے. جیسے مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے اس وقت بات کرتے ہوئے، ہینڈ بریک ہوتی ہے نا گاڑی میں، کہاں ہینڈ بریک لگانی ہے، کہاں بالکل گاڑی کو ہلکا کرنا ہے، کہاں سلو کرنا ہے، کہاں ہاتھ سے روک لینا ہے، یہ کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. آدھا جملہ بول کے خاموش ہو سکتے ہیں نا، تو کبھی پورا نہ بولیں. بعض دفعہ ہم اپنے بچے کو چار چھ جملے پوری گرامر کے یاد کر کے سناتے ہیں، پھر ڈانٹ پوری ہوتی ہے. اور بعض دفعہ بچے کو بس سادہ جملہ بول کے نہ چھوڑ دیں، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو جتنا بولیں گے نا اتنی بات خراب ہوگی. تو لہٰذا برا کیا کہ اپنے علم کو صحیح طرح سے استعمال کرنا. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ علم کے ساتھ بھی برا کا کیا تعلق ہے. سورۃ فاطر کا بھی ریفرنس بھی آیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے ڈرتے ہیں. تو کیا علم کے ساتھ ورا بڑھتا ہے؟ یعنی آپ سوچتے ہیں کہ میں بہت متقیہ ہونا چاہتی ہوں، اور ہم سب کا گول تو ورا ہی ہے انشاءاللہ، تو کیا علم حاصل کروں یا علم چھوڑ کے ورا لے لوں بیٹھ کے کمرے میں؟ تو آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. علم اور ورا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ بغیر علم و معرفت کے ورا اور پرہیزگاری بے سود ہے، بلکہ بغیر علم کے اس کا سرے سے وجود ہی ممکن نہیں. کیسے؟ اس پہ آپ تعریف دیکھیے ابو سعود کی، کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے تورو یا اختیار اور پرہیزگاری حلال اور حرام کے علم پر موقوف ہے، وہ بھی علم وہ جو قرآن و سنت پہ ہو. بھی سیدھی سی بات ہے، جب علم ہی نہیں لیا تو حلال کیا ہے تو حرام کیا پتہ کیسے چلا؟ نہیں پتہ، تو حرام یا شبہ سے بچتے بچتے حلال سے بچنے لگ گئے. تو علم بنیاد ہے ورو کی. جو لوگ کہتے ہیں نا علم نہ حاصل کرو، خود سیکھ لو، خود بیٹھ کے گھر پڑھ لو، وہ میں کہتی ہوں خود بھی بھٹکیں گے دوسرے کو بھی بھٹکائیں گے. ایسا بندہ صرف اندھیرے میں چابک ٹوئیاں مارنے والا بندہ ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں حرام کو حلال بنا چکا ہوں، حرام کو حلال. تو علم کے بعد ہی ورا آتا ہے. اس طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اتنا خوبصورت قول ہے، کہتے کہ ورا کا اتمام، اتمام کہتے کمپلیشن، اور اکمال یہ ہے کہ انسان دو بھلائیوں میں سے افضل ترین بھلائی. اب یہ ذہن میں رکھیے، آپ کے سامنے دو بھلائیوں کے کام ہیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. اس کے اپوزٹ دو برائیوں میں سے بدترین برائی کا علم رکھتا ہو، اور دونوں میں ہر چیز کے پرکھنے کا گر جانتا ہو، اور اسے اس بات کا بھی ادراک ہو کہ شریعت اسلامیہ کی بنیاد مصالح یعنی اصلاح والے کام، اس کی دستیابی اور اس کی تکمیل میں پن ہے. اب یہ اتنا مشکل پیراگراف ہے، لیکن اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ دو نیکی کے کام آپ کے سامنے ہیں، کر ایک سکتے آپ، تو کون سا کرے؟ جو بڑا ہو. اور دو گناہ کے کام ہے جن سے آپ کو رکنے میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے ایک پہ رکے، تو آپ کو پتا ہو کس کا فساد زیادہ ہے اس سے رکنا ہے. اور یہ کہاں سے آئے گا؟ علم کے ساتھ آئے گا. اور کس علم کے ساتھ آئے گا؟ قرآن اور سنت کے علم سے آئے گا. مثال کیسے؟ کوئی شخص ظالم و جابر حکمران کے ساتھ فریضہ جہاد کی ادائیگی پر آمادگی کا اظہار نہ کرے اور اس کو باعث پرہیزگاری گردانے، تو یہ اس کے علم سے کورے پن کی دلیل ہے. آج کئی لوگ کہتے ہیں نا حکمران ہی نہیں اچھے تو ہم ان کا ساتھ کیوں دیں، یہ جہالت ہے. وہ اچھے نہیں ہیں، وہ اپنا کام کریں، وہ کل اللہ کے آگے جواب دیں، آپ تو کام کریں. اگر ایک برا بندہ آپ کو اچھے کام کی دعوت دے تو مانیے، یہ بھی لے. اسی پہ لوگ دینداروں کو تنقید کرتے ہیں، خود تو ان کے عمل ایسے ہیں، ہمیں عمل کی بات کرتے ہیں. ان کو چھوڑیے، آپ کیجیے، شمع بھی تو خود جلتی ہے، آپ کو روشنی دیتی ہے. تو اگر ایسے بے عمل عالم ہیں دنیا میں تو آپ ان کی بے عملی کو چھوڑیے، اگر علم صحیح قرآن سنت کا دے رہے ہیں تو لے لیں، یہ مطلب ہے. اسی طرح مثال انہوں نے ایک دی ہے کہ مثال ہے کہ مسلم فوج میں کوئی ایسا کمانڈر مسلط کر دیا جائے جو گناہوں میں مبتلا ہو، خاص طور پہ اس موقع پہ جب کہ اسلامی فوج میدان جنگ میں کفار کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو. اب بالکل لڑائی ہو رہی ہے، اتنے میں کوئی ایک قیدی آ کے، امیجن کرے نا، مسلمان جو ہے وہ لڑائی میں گئے، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، مان لیتے ہیں کہ جو کمانڈر ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے، عین گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور کوئی آ کے کہتے تمہیں پتا یہ کس کی کمانڈر شپ میں تم یہ جنگ لڑ رہے ہو؟ وہ تو فلاں ہے. وہ کہ اچھا ہم جنگ چھوڑ رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا کمانڈر بڑا برا ہے. آپ بتائیے کہ جو ہی وہ میدان جنگ سے نکلیں گے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلامی امت کو نقصان ہوگا. یہاں پلے سے باندھ لیجئے، پلے سے باندھ لیجئے یہ بات. آپ دین کا کام کرتے ہیں نا، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں. آپ کسی کو چندہ دیتے ہیں نا، عقل سے استعمال کریں پہلے، کس کو دے رہے ہوں؟ کہیں یہ اس سے لوگوں کو کچھ اور ہی کھلا پلا کے تو نہیں آ جائیں گے؟ ایک دفعہ دے دیا نا، اس کے بعد کبھی پرچول نہ کرے کہ امام صاحب وہ کدھر لے گئے، امام صاحب کے گھر میں گیا یا کدھر گئے. اور امام صاحب کچھ بھی کرے، وہ نماز بھی نہ پڑھے نا, اور آپ کو وہ آ کے نماز پہ درس دیتے ہیں نا, آپ ان کے کہنے پہ نماز پڑھیں. یہ تو ہم دینداروں کے پیچھے خوردبین لے کے پھرتے ہیں نا, نقصان نہ دینداروں کو ہوتا ہے نہ آپ کو ہوگا, اتنا نقصان اسلام کو ہوتا ہے. جب چلتے کام کو چھوڑ کر آپ اس طرح اس کو ایسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں کہ بھئی میرے سے یہ کام آج کے بعد نہیں ہو رہا. مثال دیکھیں نا, میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں اور ابھی کتاب تھوڑی سی رہ گئی ہے, ایک دم مجھے کسی پہ شک ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ مجھے لگے کہ آپ میں سے کچھ کی تو نیت ہی بالکل ٹھیک نہیں ہے پڑھنے کی, بتکی بات ہوگی. میں آؤں میں کہوں جی میں پڑھانے آئی تھی, لیکن آپ میں سے تو کچھ لوگ جو اس نیت سے پڑھ ہی نہیں رہے کہ فائدہ لے, یہ تو اس سے کچھ شر پھیلائیں گے, تو خدا حافظ میں نہیں پڑھا رہی, تو یہ میرا ورا نہیں ہوگا, یہ میری بیوقوفی ہوگی. نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا علم سے ناتا ٹوٹ گیا. ایک اور چلے, اللہ نہ کرے, مجھے تو مثال دیتے ہوئے بھی برا لگتا ہے, لیکن مثال دیتی ہوں, میں ٹیچر ہوں آپ کے اسکول میں, آپ کی مینجمنٹ سے میرا کوئی اختلاف ہو جائے, میں آپ کو کل تک پڑھا رہی تھی, آج بھی پڑھانا تھا, صبح میرا کسی مینجمنٹ کے پرسن سے کوئی جھگڑا ہو جائے, یا وہ میں نے کوئی مطالبہ کیا ہوا تھا پورا نہیں کیا, تو میں کہہ دوں یہ پکڑے پڑھا لیں جس سے میں جا رہی ہوں, میں اپنا پرس پکڑوں ٹک ٹک سیڑھیوں سے اتر جاؤں, ہوتا ہے ایسا؟ اللہ کی قسم اتنا ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے مسلمانوں کے اداروں میں, مسجدوں میں ہوتا ہے. آپ سوچیں گے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ رات کو لوگ نماز پڑھ کے گئے ہیں تو وہ ایک مسجد تھی, اور جب اگلے دن فجر پہ لوگ آئے تو اس مسجد کی بلڈنگ کے بیچ میں راتوں رات دیوار کھڑی ہو چکی تھی. اللہ کی قسم میری آنکھوں کے سامنے, میں خود اس جگہ کو وزٹ کر چکی ہوں. مینجمنٹ کے اختلاف میں راتوں رات انہوں نے باڑ منگا کے تار منگا کے کہا جی یہ حساب جن, کیونکہ دو گروہ بن گئے, اور وہی جو مصیبتیں مسلمانوں کی, یہ ایک جگہ نہیں دو تین تو میرے کانوں میں اور آنکھوں میں گھس رہی ہیں. نقصان کس کو ہوا؟ امت مسلمہ کو ہوا. وہ گورے جو ادھر تھے, جو ان کے ارد گرد گورے ہیں, انہوں نے باتیں کی, یہ کیا ہو گیا؟ پھر ایک کے خلاف پھر دوسرے, اور کین یو بلیو کہ ایک مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے اور 4-6 گھنٹے کے بعد ہمسائے جو ہے وہ پولیس کو کال کریں کہ آگ لگی ہوئی ہے, اور بعد میں ایک شخص خود آ کے کیا کہ ہاں میں نے آگ لگائی. ایک مسلمان ایک مسجد کو آگ لگا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ ہوا, پوری مسجد جلائی, اور جل گئی تھی تو کہہ دیتے جل گئی, اس نے جا کے عدالت میں کہا ہاں میں نے جلائی ہے, کیونکہ میرے خیال میں یہ مسجد کی جو مینجمنٹ ہے یہ اختلاف ہوا اور جلا دی. پوری مسجد جلی, پھر اس مسجد کو گورنمنٹ نے جو بھی معاملے تھے ان کو کسی اور رکھا, پھر وہ پوری A to Z نہیں بنی. یہ بالکل میری آنکھوں کی دیکھی چیزیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ امت مسلمہ آج ایسے ہی تو نہیں مار کھا رہی؟ آج دین کے نام پہ جو ہم نے بے تکا کام کیا نا کہ میری مرضی ہے میں آ رہی ہوں, میری مرضی ہے میں نہیں آ رہی, یہ کہ میری مرضی تو ہے ہی نہیں, میں نے تو خود اپنے ہاتھ باندھے ہوئے. آپ کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی ابھی تک معاملہ ہی نہیں پڑا. یقین کریں کہ میں مائک پہ ہوتی ہوں اور مجھے آن لائن پہ میسج آ رہے ہوتے, اس تازہ 10 منٹ رہ گئے, تو میں نے پیار سے ان کو پوچھا اگر میں نہ چھوڑوں مائک تو انہوں نے کہا 10 منٹ کلاس لیٹ ختم ہوگی, جتنا آپ اوپر لیں گی اتنا اوپر ہوگی. پھر وہ بعد میں سوری کرے تو مطلب ہمارا جوک چلتا ہے آپس میں, تو میں نے انہیں کہا نہیں آپ کی تو جاب ہی یہ ہے سسٹر, آپ کا تو ٹائٹل ہی یہ ہے کہ آپ نے کلاس کو وقت پہ رکھنا ہے, اس کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرانا ہے, تبھی تو آپ دیکھتے ہیں پن کے ساتھ پن مل کے کورسز پورے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں قومی مفاد پیارا ہے. یہ کتاب کوئی پوری ہونی ہے, لیکن یہ کس بات پہ ہو رہی ہے کہ جب کہا 3 ویک ہے تو یہ 3 ویک ہی ہے, جیسے بھی ہوگا جو بھی ہے جو نصیب میں آپ کو مل جائے گا. تو جب تک آپ مل کے کاز کو نہیں فالو کریں گے, آپ کا دل ہی نہیں کر رہا بستر سے اٹھنے کو, جائیں جی ہو جائے گا جو ہوگا, تو شروع کے 20-25 منٹ کون لے گا آپ کی کلاس؟ آپ آئے ہیں کورس کرنے, آپ نے تجوید ہی چھوڑ دی. تو جب تک یہ کام نہیں آئیں گے آپ سمجھے آپ میں ورا نہیں ہے. ساری رات تہجد پڑھ کے سوئے نا اور صبح اپنی ذمہ داری پہ وقت پہ نہ پہنچے, تو یہ ورا کی کمی ہے. تو یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو میدان جنگ سے وہ بھاگے گا, نہ اس کمانڈر کا کوئی فائدہ ہونا ہے اس میں, نہ اس کو نہ نقصان اسلامی حکومت کو ہوگا. پھر ایک اور مثال دیتے ہیں, یہ بھی بڑی اچھی ہے. کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور مثال ہے کہ ایک شخص, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, اس نے ترکے میں مشتبہ مال چھوڑا. اب جو مال ملا نا ورثے میں, شک تھا, یقین نہیں, شک تھا کہ یہ مال ٹھیک نہیں ہے, اور وہ جس کو ملا مقروض بھی تھا. لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کو مال اور جائیداد مل گیا ہے تو اس نے آ کے کہا کہ اپنے باپ کا قرضہ ادا کرو, تو کہنے لگا کہ چونکہ مجھے اپنے باپ کے مال پہ شبہ ہے تو لہٰذا میں اس کے قرض کی ادائیگی بھی نہیں کروں گا. تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو ورع فاسد کہیں گے, بگڑا ہوا ورع ہے. ایسا شخص جاہل ہے, کیوں کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے سے وہ رک رہا ہے صرف ایک شک پہ. شبہ پڑ گیا نا کہ باپ کا مال ہے, جبکہ قرض کی ادائیگی واجب تھی. اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس مال سے, چاہے وہ شبہ والا تھا کچھ تھا, لوگوں کا قرض ادا کرتے. ताकि फिर उसके बाप के सर से कर्ज का बोझ भी तो खत्म हो जाए। तो ये चीजें कब होती हैं? जब बंदा अपने दिमाग से दीनदार बनता है। देखिए, उस्ताद का सिर्फ एक काम होता है मेरे ख्याल में, किताबें तो सामने लिखी होती हैं, वही किताब आप खुद भी पढ़ लें, वही सुन लें। उस्ताद क्या करता है? ट्रिम करता है। जैसे आप एक दरख्त को देखें तो वो सड़क के किनारे खुद ही उग जाता है, तो उसका क्या हाल होता है? उसकी शाखें इधर भी उधर भी है, आने वालों के कपड़े फाड़ेगा, रास्ते में गंदगी आएगी। एक दरख्त कहाँ है? किसी माली के कस्टडी में, बाग में लगा हुआ है, उसकी ट्रिमिंग होती है। तो ये जो हम खुद किताबें पढ़ते हैं ना, इसमें हम ट्रिम नहीं होते, उसमें हम इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, खुद कहते हैं किसी किताब में कुछ पढ़ा, किसी में कुछ पढ़ा, अब करें क्या? जो मन चाहे वो करें। तो यहाँ क्या दुरुस्त है, एक असूल समझ लीजिए कि जहाँ वाजिब और मुश्तबे चीज का तकाबुल हो। अब ये आपके लिए एक रूल बन रहा है जिंदगी का, बहुत दफा ऐसा आएगा आपको शुबा हो रहा है किसी माल पे, यकीन नहीं है, शुबा है कि इसमें कोई गड़बड़ है, इनके बिजनेस में कोई खराबी है। दूसरी तरफ आपने किसी का कोई वाजिब पूरा करना है, ज़कात देनी है या कुछ और करना है, किसी औरत है उसको शुबा पड़ता है कि मेरे शौहर की कमाई में कुछ 1-2% गड़बड़ है, लेकिन साथ ही कर्जा भी है सर पे, तो के नहीं अब ये शुबे के माल से मैंने कर्जा दे दिया तो ये तो गलत है, तो ये बेवकूफ़ी होगी। उसको कर्ज दूर करना चाहिए फटाफट, फिर बाद में वो शुबे को दूर कर ले, जो भी हकीकत है उसको देख ले। ये कहते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जहल की बुनियाद वाजिबात की परवाह नहीं करते, और कहते ही हैं कि परहेजगारी का तकाजा यही है कि हम अपने मिशन को जारी और सारी रखें चाहे जो भी हो। यदि वही बात है कि उनको फर्क समझ नहीं आता कि किस वक्त हमें क्या करना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए इमाम इब्ने तैमिया का एक कितना खूबसूरत एनालिसिस है, कहते हैं बाज़ लोग जुमा या जमात के साथ इमामों के पीछे नमाज अदा करना छोड़ देते हैं। कौन से इमाम? जिनमें बिदत या फिस्क व फजूर का शुबा पाया जाता है। शुबा याद रखिए, ये नहीं कि जो इमाम खुद माइक पे आके वो कुछ बुजुर्गों की और कहानी और कब्रों के ऊपर सजदे करने की बात करते, उसकी ये बात नहीं हो रही। इसको आप ऐसे लें, बल्कि मुझे किसी का वाक्य भी एक याद आ गया। आप सफर में, आप यहाँ से कहते हैं बाय रोड जाते हैं, कोई भी शहर ले लीजिए, रास्ते में एक मस्जिद आए, आप मस्जिद में नमाज के लिए रुके। आपको नहीं पता ये मस्जिद कुरान सुन्नत आलों की, आपको नहीं पता ये मस्जिद किन की है, कुछ भी, आपका क्या काम है? आप उठे, नमाज पढ़े, जाए, जमात हो रही है तो मिल जाए। सिर्फ डाउट की बेस पे कि नहीं पता नहीं ये इनके अकीदे में खराबी हो, पता नहीं ये हराम काम ना करते हो, मैं जमात छोड़ देता हूँ, अकेले पढ़ता हूँ, ये दुरुस्त नहीं होगा, राइट? तो ये कहते हैं कि जिन इमामों के बारे में शक होता है कि इनमें बिदत है या कोई फिस्क है, फिस्क मतलब बड़े गुना, तो फिर वो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि ये वरा नहीं है सच्चे गवाह की गवाही कबूल करने और आलम दीन से तालीमो ताल्लुम या एक फैज हासिल करने से सिर्फ इसी बुनियाद पर रुक जाना कि वो हल्की फुल्की बिदत का मुर्तकिब है, और हक की इस दोहाई को कबूल करने से इनकार कर देना, हालांकि जिसका सुनना और कबूल करना वरा का तकाजा है। तो बात मुश्किल है। खुलासा क्या है? जिस इमाम के बारे में सिर्फ शक हो, डाउट हो, आप उसके पीछे पढ़ लीजिए नमाज, फर्ज नमाज है, आप पढ़ लें, आपकी नमाज आपकी है, उसकी आप उसकी। हाँ, आदत ना बनाए कि एक बंदा कुरान सुन्नत के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है और दूसरी मस्जिद चूंकि आपके करीब है, आपको साफ पता है कि उनके अकायद में खराबी है और वो दीन से दूर है, फिर आप उनको रौनक ना दें, फिर आपको उस जगह पर रौनक बख्शना भी ठीक नहीं, सिर्फ इस वजह से कि वो घर के करीब है। चूज उसको करे जिसमें कुरान सुन्नत है, लेकिन अगर कभी रात जाते पड़े, कोई आपके घर आ गया, कोई चले गए, तो ऐसे वक्त में लोगों से फिर सफाइयां न पेश करें। और आगे आप बात पढ़ेंगे कि जब किसी के बारे में शक पड़े तो करना क्या चाहिए। हम यहाँ कुछ प्रैक्टिकल कहानियां सुनते हैं, क्योंकि वरा समझ ही अमली बातों से आता है। ये वो सब्जेक्ट है, लिखे वैसे नहीं समझ आता जब तक लोगों का किया ना दिखे। तो हमारे जो सल्फ सालेहीन थे उनमें बहुत ज्यादा वरा था, आजजी भी बहुत थी, तवाज़ो भी बहुत था, और अमूमन इस तरह की कोशिशें मेहनतों से हासिल होती हैं, यानी वो मेहनत करते थे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, ताकि फिर उनको अपने ऊपर काबू आ जाए। इमाम शाबी का एक बड़ा खूबसूरत जुमला, कहते हैं उलमा के गिरोह से ताल्लुक़ रखने वालों। अब जो हैं उलमा वो इस जुमले को सुन के खुद ही कहेंगे जी। दूसरे, ए फुकहा की जमात से वाबस्ता लोगों, हम ना तो फुकहा हैं और ना ही उलमा, लेकिन हमने हदीस नबवी को सुना तो हमने जो कुछ सुना इसी को हम तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं। और फकीह तो वो है जो अल्लाह की नाजायज करदा हराम करदा चीज़ों से वरा यानी परहेजगारी करने वाला हो, यानी इनसे दूर रहने वाला हो, और आलिम वो है जो अल्लाह के खौफ और खशियत से सरशार हो। बात वाज़े, ना खुद को फकीह कहलाना चाहिए ना आलिम कहलाना चाहिए। कहते कितना मशहूर कोर्स है हमारे कल्चर में, आलिमा का कोर्स, आलिमा फाजिला का कोर्स। एक जगह कहीं थे हम, तो हाजरीन में जो लोग थे उनसे कुछ बात हो रही थी, तो एक सिस्टर थी अच्छी दरमियानी उम्र की थी, तो बात हुई कोई, तो कहने की मैं आलिमा हूँ ना, तो मैं समझी उनका नाम आलिम है। मैंने कहा अच्छा काफ़ी यूनिक नाम है, तो मैं समझी इनका नाम आलिम। रियली मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा कि दूसरे भी लोग अपना नाम बता के बात शुरू कर रहे थे। ऐसे ही शुरू में दर्स के इंट्रोडक्शन होते हैं ना, आप कौन है, आप कहाँ से, तो आप भी बता रही हैं, तो वो भी कहेंगे मैं आलिम हूँ। मैंने जब उनकी बात को इतना नोटिस नहीं, फिर वो कहेंगे नहीं मैं आलिमा फाजिला हूँ। फिर बाद में उन्होंने अपना नाम बताया, फिर उन्होंने बताया मैंने किसी मदरसे से ये कुछ पढ़ा हुआ है ना। और यकीन करें कि जब वो कुरान या दर्स की कोई कुरान की तफसीर की बात होती है तो उनको नहीं पता होता, तो कभी भी अपने नाम के साथ कोई साहब का लाख करना लगाए। इतना ज्यादा इस पे गौर व फिक्र होता है, यकीन करें हर जगह जहाँ फ्लायर छपने होते हैं, जहाँ नया काम शुरू होता है, लोग टाइटल मांगते हैं, आप बताएं आपका क्या टाइटल है। भाई मेरा नाम एक ही है सिस्टर, बहुत लिखना तो इंस्ट्रक्टर लिख दीजिए अपने स्कूल के नाम के साथ, मुझे इसे ज्यादा ना मुश्किल में डालें, मेरी भला से आप मुझे डायरेक्टर लिख दें, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन लिख दें, कुछ लिख दें, मुझे क्या लगे इससे, अल्लाह की नजरों में मेरा क्या मुकाम है। तो ऑलवेज अपना प्रोफाइल लो रखें, नीचा रखें, कभी अपने नाम के साथ ना करें। आप ये कोर्सेज कर रहे हैं ना, आपके किसी कोर्स के बाद कोई टाइटल तो नहीं आपको मिलता ना? जैसे आप देखिए कि हम हाज करने वाले को हाजी कहते हैं ना, नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं, तो ज़कात देने वाले को क्या कहेंगे, सदका देने वाले को क्या कहेंगे, कहाँ रुकेंगे, आपके तो इतने नाम बन जाएंगे। तो बस अल्लाह का आजिज़ और मस्कीन बंदा खुद को कहें। पिछली उम्मतों के तकवा की कहानी बहुत ही मशहूर है, आपने सुनी भी होगी, और किसी के साथ आज भी हो तो ऐसा हो सकता है, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, और चूंकि अल्लाह के नबी ने सुनाई है तो इंशाल्लाह ये हकीकी होगी। एक शख्स ने ज़मीन बेची और एक ने खरीदी, बहुत करके जब चीज़ हो गई ख़त्म हुई, जिसने खरीदी बाद में उसने उसको ज़रा खोदना शुरू किया कि चलो इसमें कुछ काम करें, तो अंदर से एक देग निकली, सोने से भरी हुई थी। अब जिस शख्स ने खरीदी उसको क्या चाहिए था कि मेरी ज़मीन है मैंने ले ली, लेकिन उसका बरा उसको क्या कहता है कि बात सुनो तुमने तो ज़मीन के पैसे दिए, सोने की देग के तो नहीं दिए। अब क्या हुआ, वो गया उस शख्स के पास जिससे खरीदी थी, कहने लगा कि मैंने ज़मीन तुमसे खरीदी है लेकिन उसमें से ये सोने की चीज़ निकली है। उसने कहा जो भी निकली जब मैंने तुम्हें दे दी तो तुम्हारी, कहने का नहीं ये तो नहीं होगा। देखिए वरा का आखिरी हद, हम तो कोई चीज़ भी फालतू किसी के आ जाए कहते खुद ही डाल दी होगी ले लो, खुशी से दे दी होगी, नहीं। खैर मामला चला, अब कहा क्या करें। दोनों जो थे वो एक तीसरे शख्स के पास गए कि हमारा मामला सेट करो, दोनों ही नहीं ले रहे, पड़ी भी है। उसने कहा तुम जब तो तुम्हारे बच्चे हैं, कहा हाँ एक का बेटा था एक ही बेटी, कहने लगा तुम दोनों की शादी कर दो और ये पैसा उनको दे दो और बाकी जो है वो सदका कर दो। ये होता है वरा, कर सकते कोई ये, हम तो कानो कान खबर ना होने दें कि किसी की कोई चीज़ अंदर से निकल आई है। तो कहीं से कभी ग्रोसरी स्टोर से भी कोई चीज़ खरीदे ना, और लिस्ट में से कोई चीज़ ज्यादा निकल आई या जो आपने नहीं ली थी, फौरन वापस जाए, वो चाहे एक दो डॉलर की चीज़ क्यों ना हो, लेकिन वो आपके वरा का इम्तिहान हो सकता है। बंदे ने नहीं डाली, फरिश्तों से अल्लाह डलवा के आपका वरा चेक करवा सकता है। इसी तरह की एक और कहानी है, हज़रत अबू हुरैरा से ये भी रिवायत है, नबी सल्लम के बारे में आता है, हसन बिन अली से। बच्चे थे भी ये, खजूरों में से एक खजूर ली और मुंह में डाल दी, अल्लाह के नबी ने जूं ही मासूम बच्चे को खजूर मुंह में डाले देखा, कहा थूको थूको, फिर फरमाया तुमको पता नहीं हम लोग सदके का माल नहीं खाते। अब आप देखिए बच्चा, और बच्चे तो वैसे ही रफुल कलम होते हैं, उनके अमल नहीं लिखे जाते, कमसन था, गैर मुकल्लफ था, लेकिन अल्लाह के नबी का वरा था कि आपने अपने नवासे को वो चीज़ जो जायज़ नहीं थी उसका एक लुकमा भी ना खाने दिया। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया मैं अपनी अहलिया के पास आता हूँ यानी घर में आता हूँ, तो बिस्तर पर मुझे कोई खजूर वगैरह मिलती है, खाने के लिए उसको पकड़ भी लेता हूँ। अब घर में मर्द आए तो खाना खा सकते हैं ना, डाइनिंग टेबल पे कुछ रखा है खा ले, लेकिन फिर मैं इस ख्याल से कि कहीं ये सदके की ना हो इसको छोड़ देता और नहीं खाता। मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं पीछे तो हमने बात की ना जुबान का वरा मुश्किल है, जैसे बोलने में जुबान का वरा मुश्किल है ना, वैसे ही जुबान के टेस्ट का वरा भी बड़ा मुश्किल है। आप कहीं जाएं और कोई ऐसी चीज आपके सामने है, खुशबू आ रही है, मजे की है, टेस्टी है, लेकिन वो कोई बिदत हो रही है वहां, या आपको शक है कि जिनके घर का खाना है वो ठीक नहीं, यकीन की बात है कि ठीक नहीं है, उस वक्त जो रोकना मुश्किल है। फिर लोग जो तावीलें करते हैं, अल्लाह की पनाह ये है वो है, फिर ये हमारे घरों में नहीं आएंगे, फिर हम के नहीं जाएंगे, फिर वो नहीं, इतने वाजे इशारे हैं। और तो पेट के अंदर जो खाना जाता है ना उसका वरा बहुत मुश्किल है। सिर्फ वही कर सकता है जिसने खुद को सेल्फ कंट्रोल का आदी किया हो। इसी तरह सहाबा का वरा देखिए, मशहूर वाक्य आपने सुलह हुदैबिया के नाते में सूरह मायदा में सुन रखा है कि अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के साथ गए, ये असल में हुदैबिया के सफर की बात है, काहा नाम की वादी में स्टॉप ओवर था, कुछ लोग एहराम से थे कुछ नहीं थे। कहते मैंने देखा अपने दोस्तों को, वो किसी चीज के देखने में बड़े महव हैं, मैंने गौर से देखा तो वो नील गाय थी, यानी वो गोश्त खा सकते थे उसका, और वो गोश्त तो मिलता भी इनको कम था, ये एहराम में नहीं थे। अबू कतादा कहते हैं जब मैंने देखा, लोगों ने पहले खंगूरे मारे कि शायद मैं देख लूं कुछ करूं, खैर कहते हैं जब मैं गया कि मैं एहराम में नहीं था, मैं उसका शिकार कर सकता था, तो कहते हैं जूं ही जल्दी में मैं अपने घोड़े पे बैठा तो मेरा कोड़ा नीचे गिर गया, तो मैंने पास खड़े शख्स को कहा ये जरा मुझे कोड़ा पकड़ा दो, लेकिन उसने इस डर से कि शिकार की नीयत से तुम जा रहे हो और अगर तुम्हें कोड़ा पकड़ा दिया तो कहीं हमारे अहराम पे इसकी हद ना पड़े, उन्होंने नहीं दिया। ये वहां से उतरे नीचे, फिर उसके बाद उसको उठाया और उस नील गाय को काटा, उसका शिकार किया और वापस गोश्त लेकर आए। अब साथियों को शक हुआ, कहा नहीं हम एहराम में, पता नहीं ये शिकार का गोश्त भी हम खा सकते हैं कि नहीं, तो मामला नबी सल्लम तक पहुंचा तो आपने फरमाया कि खाओ पियो ये हलाल है, शिकार करना मना है, गोश्त खाना तो मना नहीं है ना। तो ये देखिए सहाबा का वरा एक कोड़ा नहीं उठा के दे सके अबू कतादा को। हम कहते हैं अबू कतादा माइंड कर जाएंगे, ये मेरे रिश्तेदार हैं, वो है दिस एंड दैट, तो लेकिन मदद नहीं की, लेकिन भी गोश्त सबने मिलके खाया, तो ये भी तकवा की बात है। इसी तरह आप देखिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका तकवा क्या था, याद रखिए नबी सल्लम के बाद उम्मत में सबसे बड़ा मुतवर्रे जो इंसान गुजरा है ना, वो अबू बकर सिद्दीक है। वलीउल्लाह कह लें, पहुंचावा कह लें, अल्लाह का करीबी कह लीजिए, वो अबू बकर थे। और उसकी वजह क्या थी कि उनके अंदर वरा हद से बड़ा हुआ था। हजरत आयशा कहती कि अबू बकर का एक गुलाम था, वो इनको खराज अदा किया करता था, कुछ ऐसे काम पे था कि खराज आपको पता है ना क्या होता है, नॉन मुस्लिमों से जो माल जमा किया जाता है, किस्सा मुख्तसर के आप अपने लफ्जों में सुन लें कि अबू बकर का एक गुलाम था, तो वो कुछ काम करता था, उसके बाद कुछ खाना लाता अबू बकर को पेश करता तो ये ले लेते थे इस राह मोहब्बत, जैसे आपकी मेड कुछ के बाजी ये मैं घर से लाई हूँ आप भी खा लें, खा लेते हैं। एक दिन उसने अबू बकर को कुछ पेश किया तो अबू बकर ने लिया और पेट में डाल लिया, तो गुलाम ने कहा कि अबू बकर ये जो मैंने अभी आपको चीज़ दी है ना, ये कहाँ से दी है, जाहिलियत के जमाने में मैंने किसी शख्स की कहानत की थी, कहानत क्या थी, पमिस्ट्री, सितारों का हाल मालूम किया, हालांकि मुझे आता कोई नहीं था, बस मैंने धोखा देने के लिए किसी को कहा तुम्हारे सितारे ये कहते हैं वो कहते हैं, तो उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने ये चीज़ मुझे अब दी है। तो अबू बकर सिद्दीक ने उसी वक्त अपने मुंह में उंगली डाली, कह की पेट का निकाला, क्यों कि मैं अपने पेट में कोई ऐसा लुकमा भी ना ले जाऊं कि जो पामिस्ट्री और किस्मत मालूम करने के हाल से हो, हालांकि वो शक था आता कोई नहीं था उसको, लेकिन अबू बकर के पेट में यानी सिद्दीकों के पेट में ऐसे लुकमे नहीं रहते, ये तो बड़े हौसले वाले लोग होते हैं जो इन टुकड़ों को बर्दाश्त करें और फिर भी दुनिया में नेकियां करते रहें, क्योंकि इन टुकड़ों का सबसे बड़ा नुकसान ही क्या होता है कि इंसान से नेकियां रुखसत होती हैं। फिर हजरत उमर फारूक का तकवा सुन लीजिए, इब्ने उमर खुद अपने बाप के बारे में कहते हैं कि आपने मुहाजरीन में से चार लोगों के लिए 4,000 दीनार या दिरहम मुतय्यन किए, ठीक है, जो लोग हिजरत करके आए थे उनको प्रोटोकॉल मिलता था उमर के दौर में, तो 4,000 एक एक बंदे को दिया। अब उन चार में से एक इब्ने उमर भी थे, अबू बकर इनको 3,500 देने लगे। लोगों ने पूछा कि भाई सबको 4,000 तो इसको आप 3,500 क्यों दे रहे हैं, बेटा तो था ही। कहने लगे देखो तुम सब ने अपने शऊर से हिजरत की, जबकि इब्ने उमर ये जो बच्चा है इसको तो इसके माँ बाप उठा कर ले आए थे, यानी हिजरत के वक्त में कोई इसका इरादा तो मौजूद नहीं था ना, बच्चे जो थे उस वक्त इब्ने उमर बहुत छोटे थे जब मक्का से मदीना हिजरत हुई, तो लिहाजा कहा तुमने जो काम अपनी नीयत से किया है तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा, इसको कम दूंगा। और दूसरी बात है कि बेटा भी था, कितना मुश्किल होता है ऐसे वक्तों में अपने आप को जमाना, यही वो वक्त है जहां प्रिविलेजेस ले जाते हैं मेरा फायदा। आप देखिए एक रूल है ना, कोई भी स्कूल का रूल बना लें, किसी इदारे का रूल बना, रूल तो सबके लिए रूल है, मेरे लिए भी रूल है आपके लिए भी रूल है, मैं अपनी किसी पोजीशन से फायदा उठाते हुए बेनिफिट ज्यादा ले जाऊं आप सबसे तो नुकसान किसको हुआ, दीन को नुकसान हुआ, ये वरा की कमी होती है। इसलिए जिसको जो भी जिम्मेदारी मिले ये उसका इम्तिहान होता है, क्या उसकी आड़ में कोई अपने लिए जाती फायदा तो नहीं रखा हुआ कि ये काम ही मैंने करना है ताकि मुझे इससे ज्यादा फायदा हो जाए। پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سالبہ بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی، آخر میں ایک بڑی خوبصورت چادر بچی جو بڑی قیمتی تھی۔ تو حضرت عمر کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، یہ آپ اللہ کے نبی کی نواسی کو دے دیں جن کا نام ام کلثوم بنت علی ہے۔ کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی یہ، اور حضرت عمر کے نکاح میں تھی۔ پہلے تو آپ ذرا اس پہ غور کیجئے۔ کبھی آپ جب عربوں کے رشتے دیکھتے ہیں تو آپ چاروں کو لکھ کے دیکھ لیں، ابو بکر، عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے داماد بھی تھے، داماد تھے نا۔ کبھی آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی نے کوئی بڑک ماری ہو تو میں پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا، تمہاری بیٹی میرے گھر میں ہے، عمر تم ذرا سمجھ کے رہنا۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت عمر کے نکاح میں، اور اسی طرح ابو بکر کا بھی تھا آگے، یہ کیوں بھائی؟ اب آپ سوچئے کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت عمر سے کتنی چھوٹی ہوں گی، اس پہ کبھی آپ نے بات بھی نہیں سنی ہوگی۔ تو عائشہ کے نکاح پہ کیوں اتنی پریشانی ہے لوگوں کو؟ عربوں کا کلچر تھا، اور یہ رشتہ داریاں جوڑتے تھے۔ حضرت عمر کو اس چیز کا بڑا ملال تھا کہ میرا تعلق اس طرح سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جیسے دوسروں سے ہے۔ تو حضرت عثمان کے نکاح میں آپ کی دو بیٹیاں تھیں نا، تو لہٰذا حضرت عمر نے آپ کی نواسی سے نکاح کیا تھا۔ اور جب ماں باپ کرنے کو تیار ہے تو آج والوں کو کیا تکلیف ہے؟ کبھی کسی نے اس دور میں نہیں کہا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی عمر کی بیٹیاں تمہارے بڑے بڑے مرد لے کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ آج کے صرف شوشے ہیں۔ تو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ان کو دے دیں، چلے آپ کی بیوی تو ہیں، ان نبی کی نواسی تو ہیں، کہنے کا نہیں نہیں ام سلیت اس کی زیادہ حقدار ہے جو انصاری قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے بیعت خود کی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ وہ عورت ہے جو غزوہ احد کے دن مشکیزوں کی سلائی کیا کرتی، سیتی تھی، پانی بھرتے ہیں نا، مشک ہوتی ہے، پھٹ جاتی ہوں گی، تو کہتی چونکہ وہ کرتی تھی تو ان کو دیں گے، ہم ہوتے تو کہتے آج بیگم کو خوش کرتے ہیں، آج بیگم میں تمہارے لیے وہ لائے ہوں جو نہیں ہے۔ ان صحابہ کے اس بارے میں تصور بھی آتا ہے ان چیزوں کا، ان کے معیار سے بہت گری ہوئی چیز لگتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے بہترین معیار رکھیں، کوئی نہ دیکھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کیا۔ یہ آپ کا صدقہ ٹیبل ہے، کبھی آپ نہیں ہوتے، میں کہیں جاتی ہوں میرا دل کرتا ہے کوئی چیز لے جاؤں کسی کے لیے، جب میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں، یہاں سے کچھ لیتی ہوں، غم کیا پڑا ہوتا ہے کہ بتانے سے پہلے میں مر گئی کیا ہوگا، کس کو بتاؤ۔ پرسوں بھی جا رہی تھی کہیں، یہ اللہ کا شکر ہے آپ کا نمائندہ ادھر موجود تھا، تو قیمت نہیں تھی لکھی۔ پھر اس نے اپنی گواہی پہ کہا کہ آپ لے لیں، فکر نہیں کریں، اور اس کے پیسے ہم آپ سے لے لیں گے۔ تو پھر میں نے جا کے کسی کو گفٹ میں دی جن کے گھر میں جا رہی تھی، مجھے کون روکے گا بھائی، آپ کو کیا پتہ چلے گا، لیکن مجھے تو پتہ چلتا ہے نا۔ تو کبھی بھی اپنے بچوں کو بھی عادی کریں، یہ آپ کا چھوٹو، یہ آپ کا بیٹا جو بریک میں گناہ کماتا ہے، آپ کو پتہ کل ادھر سے آیا، یہ ادھر سے آ کے نا پہلے یہاں جو سسٹر بیٹھی تھی نا اس نے اس کا وہ پکڑا ہائی لائٹر، اس کو کہتے رہو، اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ مجھے کہا کہ نہیں کہا، اس نے اس کا ہائی لائٹر اٹھایا تھا، تو میری تو جان پہ بن گئی کہ جو بھی سسٹر بیٹھی تھی آئیں گی تو ہائی لائٹر نہیں، ادھر سے پکڑ کے نا اسے ادھر چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو ادھر ایک اور دکھ گیا، میرے پاس پتہ نہیں کون تھی، میں نے کہا جلدی کر، شاید یہی تھی، تو انہوں نے پھر لا کے اس کو واپس لیا، پھر ادھر سے واپس جا رہا تو جاتے جاتے ان کا اٹھا کے جا رہا۔ تو میں نے کہا اس کو عقل سکھاؤ بھی کہ یہ ہائی لائٹر بھی کوئی 20-25 کرون کا تو آتا ہی ہوگا، تو یہ کل دینا پڑے گا۔ تو بچوں کو یہ سکھائیں، کبھی اپنے بچے کے بیگ میں کوئی شارپنر، کوئی پینسل، کوئی لیڈ، کچھ بھی دیکھے فوراً روکے، اسی سے انشاءاللہ پھر ان کے اندر احساس بڑھے گا اللہ کے حکم سے۔ پھر حضرت زینب بنت جہش کا تقویٰ دیکھیے یا ورا دیکھیے، کہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، واقعہ عفق تھا، یہ قریب تھی کہ اللہ کے نبی کی بیوی پر تہمت لگاتی، کیونکہ سوکن پناہ بھی تھا نا، حضرت زینب نے حضرت عائشہ کے سوکن پنے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات کرنے کا اشارہ کیا ہوگا، لیکن حضرت زینب نے کہا ایسی بات میں نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو عائشہ کو ہمیشہ خیر پہ دیکھا، ہم کتنے آرام سے اپنی دیورانیوں کے لیے کمنٹس دے دیتے ہیں، چلے آج ہمارے کلچر میں سوکناپا تو ہے نہیں ہے، کریں کہاں، مر جائیں گے کدھر ہے دوسری بیوی کر کے، وہ جتنی مرضی رکھیں اپنی سسٹنٹس رکھ لیں، شادی نہیں کریں، کہتے اب نہیں میں اس کے ساتھ رہ سکتی، کیوں، اب تو اس نے شادی بھی کر لی اس عورت سے، یعنی جب تک گرل فرینڈ تھی اس کی تو ٹھیک تھی، میں رہ رہی تھی، صبر کر رہی تھی، اب چونکہ اس نے شادی کر لی ہے تو اب میں نہیں رہ سکتی، بیوقوفی ہے، گناہ میں اس کو رکھ سکتے ہیں، نیکی میں آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ نہیں کیا کبھی ایسے رشتے، جہاں بھی، یعنی نند بھاوج کا رشتہ عموماً ہوتا ہے یا ساس بہو کا، کبھی بھی فائدہ اٹھا کر ان کی برائی نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بس وہ جلتی پہ تیل ڈال کے آگے نکل جاتے ہیں، بعض دفعہ لوگ دیکھتے ہیں نا کسی کے بارے میں آپ کا دل کھٹا ہے، कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लोग जान के उनकी बातें करेंगे ताकि ये कुछ बोले, तो वो आपका इम्तिहान होगा। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें हकीकत में वरा का अहल कर दे।